हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। ब्रह्म विद्यायाम सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय चल रहा है। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश अर्जुन को जो भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व दिया, वो तो केवल अर्जुन को बल्कि ये दिव्य संदेश है जो कि अनंत काल से भगवान जीवों को देते आ रहे हैं। तो इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों के संदर्भ में पिछले कुछ श्लोकों से हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान इंद्रियों की प्रबलता जो कि मन और बुद्धि को भी हर लेती है, उसे जोर देते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, ये जो तुम्हारी स्थिति हो रही है कि तुम दुविधा में हो, युद्ध करो या न करो, इसका संबंध तुम्हारी अस्थिर बुद्धि के द्वारा है। और तुम्हारी अस्थिर बुद्धि तुम्हारे अनियंत्रित मन के कारण और तुम्हारा अनियंत्रित मन तुम्हारे अनियंत्रित इंद्रियों के कारण। तो भगवान अर्जुन की इंद्रियों को एक प्रकार से अनियंत्रित कह रहे हैं, जबकि महाभारत में ऐसे ऐसे दृष्टांत प्रसंग हैं जहां अर्जुन ने जो इंद्रिय निग्रह दिखाया उसकी कोई कल्पना में नहीं कर सकता। तो अर्जुन को भूमिका बनाते हुए भगवान हमें समझा रहे हैं। तो पिछले श्लोक से और आज के श्लोक का संबंध पहले हम देखेंगे। पिछले हफ्ते हमने सुना अनियंत्रित एवं विचरणशील इंद्रियों का क्या प्रभाव होता है, और आज के श्लोक में भगवान बताने वाले हैं नियंत्रित इंद्रियों का प्रभाव क्या होता है। तो दोनों की उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, लाभ हानि दोनों बता रहे हैं। तो आज का श्लोक इस प्रकार से है। तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्माद्यस्य। तो यहां फिर भगवान अर्जुन को स्थिर बुद्धि जिसकी हो जाती है या स्थिर बुद्धि प्राप्त करने के प्रयोजन क्या हैं ये बता रहे हैं। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये जो अंतिम लाइन है ये काफी श्लोकों में अब तक आ रही है, आप सुन रहे होंगे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसकी चर्चा हम वो अंतिम लाइन तक पहुंचेंगे तब करेंगे कि ये भगवान बार बार इस लाइन को इतने श्लोकों में क्यों दोहरा रहे। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, स्थिर बुद्धि में जो प्रतिष्ठित मनुष्य। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन को पुकार रहे हैं, हे महाबाहो। अर्जुन को ये ख्याति मिली हुई थी जिनकी भुजाएं बहुत बलवान हैं। तो हे बलवान भुजाओं के अर्जुन, तो यहां पर भगवान एक दृष्टिकोण से थोड़ा व्यंग्य भी कर रहे हैं कि इतने बलवान तुम्हारे भुजाएं हैं लेकिन तुम गांडीव नहीं उठा पा रहे। तो अर्जुन की भुजाएं जो इतनी बलवान हैं और गांडीव की कोई तुलना नहीं है। जैसे कि कोई छोटा सा बालक है वो एक कोई पंखुड़ी नहीं उठा पाएगा, या कह छोड़ दी, छोटा बालक नहीं, कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, कोई यदि फूल, गुलाब का फूल उठाने उसको कहे तो उसको बहुत भारी वो लगे। तो ये भगवान कह रहे हैं कि तस्मात, तस्मात का अर्थ है अतः, अंग्रेजी में देयरफॉर। किनके हैं ये दोनों बच्चे? यदि कोई माता पिता इनके यहां पर हैं तो कृपया करके इनको बाहर ले जाइए, और यदि नहीं है तो अंदर मत आने दीजिए अभी किसी बच्चों को यहां से। तो तस्माद का अर्थ है अतः, इंग्लिश में प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेट किया है देयरफॉर। तो अब ये समझना आवश्यक है कि हम लोग तो एक हफ्ते बाद दूसरा श्लोक लेते हैं, लेकिन भगवान कुछ 45 मिनट एक घंटे में सारे 700 श्लोक बोल दिए थे भगवान। इसलिए पिछले श्लोक और उनके पिछले श्लोकों को बोलते हुए भगवान कह रहे हैं देयरफॉर अर्जुन, इसलिए अर्जुन, यस्य, वो महाबाहो अर्जुन को जो उल्लेख कर रहे हैं भगवान, निग्रहीतानि, जिसने अपनी इंद्रियों पर निग्रह हासिल कर लिया है, कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस, इंद्रिय निग्रह जिसने प्राप्त कर लिया है, सर्वशः, कैसे, सब तरीके से, सर्वशः, हर तरीके से, हर मायने में जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, हे महाबाहो, इंद्रियाणि, इंद्रिय अर्थ अर्थेभ्यस, कि इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ जिसकी चर्चा हमने पिछले हफ्ते भी की थी, सेंसेस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स, उन दोनों को जिसने वश में कर लिया, अपने इंद्रियों को और उन इंद्रियों के जो अर्थ हैं उनको भी, केवल अपनी इंद्रियों को नहीं बल्कि इंद्रियों के अर्थों को भी जिसने वश में कर लिया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, हे अर्जुन, उसकी बुद्धि वास्तविक रूप में स्थिर है। नहीं तो जिसने ये सब कुछ नहीं किया, भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि एक इंद्रिय प्रचंड वायु की तरह उसकी बुद्धि रूपी नाव को इस सागर से बहा ले जाती है, या उस जलाशय से, सरोवर से बहा ले जाती है। तो अब संस्कृत तो हम समझ लिए, तो पूरा अनुवाद इस प्रकार से है, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो सबसे पहले हम महाबाहु, भगवान ने जो अर्जुन को पुकारा है कि हे बलवान भुजाओं वाले अर्जुन, तो महाबाहु अर्जुन को इसलिए पुकारा गया क्योंकि महाभारत में अनेक शत्रुओं का एक साथ संहार अर्जुन कर पाते थे। इसलिए जो रथी, अर्धरथी, अतिरथी, महारथी, इनकी श्रेणियों में अर्जुन महारथी थे। तो महारथी अर्जुन को इसलिए कहा गया कि अर्जुन एक साथ कुछ चंद सैनिक नहीं शत्रु पक्ष के, अपितु सैकड़ों में और करोड़ों की संख्या में अर्जुन एक साथ अकेले संहार कर सकते थे, क्योंकि अर्जुन के भुजाओं में इतना बल था। महाभारत में वर्णन है अर्जुन के, एक एक एग्जाम्पल, अर्जुन की भुजाएं कितनी शक्तिशाली थी कि यदि कोई शत्रु किसी हाथी के आड़ में छिपा हुआ है, केवल एक नहीं कई हाथियों के आड़ में कोई शत्रु यदि छिपा हुआ है, तो अर्जुन का बाण हाथियों के शरीर को भेदते हुए उस शत्रु को मार सकता था। अब देखिए हाथियों का शरीर तो हम जानते हैं, और वो कौन से हाथी? उस जमाने के हाथी, उस युग के, आजकल के नहीं, कलयुग के हाथी नहीं, वो पिछले युग के हाथी, जो कि आज के युग की तुलना में कुछ सैकड़ों क्रमांक में ज्यादा शक्तिशाली, ऐसे हाथी। अब ये नहीं कि यहां पर जो आजकल बॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं वो अलग, वो तो खाली कंप्यूटर पर कर लिया जाता है वो सब स्टंट्स, रजनीकांत जैसे सामने तीन विलन आ गए और उसकी बंदूक की नाली में एक गोली है, तो कैसे मारेगा? तो चाकू फेंकता है, नहीं नहीं नहीं, पहले गोली चलाता है, फिर वो गोली जब हवा में जा रही है उसको मारने के लिए तो चाकू फेंकता है, गोली दो टुकड़े में विभाजित होती है, तो एक टुकड़ा एक विलेन जो लेफ्ट में है, दूसरा टुकड़ा वो राइट वाले विलेन में, और वो चाकू बीच वाले, तो फिर सब बोलते हैं महाबाहो। तो यहां पर अर्जुन के विषय में बताया गया है कि अर्जुन की भुजाएं इतनी ज्यादा शक्तिशाली। जयद्रथ, आपने जयद्रथ का संहार सुना होगा महाभारत में, जयद्रथ जिसने बहुत ही निशंस तरीके से अभिमन्यु का वध किया, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र। तो जब अर्जुन को पता लगा इस जयद्रथ का ये सब कारस्थान था, तो अर्जुन ने प्रण लिया कि कल सूर्यास्त से पहले या तो जयद्रथ जिंदा रहेगा या मैं। तो हालांकि भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि उस जमाने के जो प्रण भी हुआ करते, तो ऐसा नहीं कि सूर्यास्त के बाद यदि जयद्रथ नहीं मरा तो अर्जुन ने पोस्टपोन कर दिया अगले सूर्यास्त के लिए। आजकल ऐसा हो सकता है कलयुग में। तो उस दिन जो जयद्रथ, अब कौरवों ने किया क्या कि जब जैसे दुर्योधन ने यह सुन लिया, तो दुर्योधन ये तो जानता था कि जयद्रथ अगर सामने आ गया तो वो तो खत्म हो जाने वाला है, कोई उसके अंदर कोई क्षमता नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, कोई कला नहीं है, युद्ध कौशल नहीं है कि अर्जुन से वो जीत पाए। तो अब हमें करना क्या है, दुर्योधन की योजना ये थी, हमें करना क्या है कि सूर्यास्त तक जयद्रथ को छिपा के रखो, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो अर्जुन ने प्रण लिया है कि वो अपने आप को खत्म कर देंगे तो फिर हमको टेंशन ही नहीं है। तो जयद्रथ को उनके जितने वो सेनाएं थीं, कौरव सेनाएं, उनके फैलिंग्सेस जिनको कहते हैं, उनके पीछे जयद्रथ को छिपा के रखा। तो यहां पर भगवान अर्जुन को ये बुला रहे हैं कि महाबाहो, तो अर्जुन ने इतने सारी करोड़ों की संख्या में ये सैनिक, हाथी, घोड़े सारे सबको मारते हुए जयद्रथ तक पहुंचे, और कई तो ऐसे सैनिक थे अकेले, और ये नहीं कि अर्जुन कोई बहुत बड़ी टीम को लेकर, भीम और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव इनको और उनकी सेना को लेकर नहीं, अकेले अर्जुन। तो कई तो ऐसे सैनिक कि अर्जुन ने केवल शंखनाद किया, और शंखनाद इतनी प्रचंड उसकी ध्वनि सुनते ही कई सैनिक वहीं पर बेहोश हो गए कि अर्जुन को अपना धनुष बाण भी इस्तेमाल करना नहीं पड़ा। तो यहां पर महाभारत में यह वर्णन है कि अर्जुन के अंदर ऐसी शक्ति थी कि अपनी भुजाओं से और एक शंखनाद से कि वो कोई भी वस्तु को शस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर पाते थे। ये जरूरी नहीं था कि धनुष बाण ही चाहिए मारने के लिए, वो अपने भुजाओं से, शंख से, किसी भी वस्तु से वो शस्त्र उसे बनाकर शत्रु का संहार कर सकते थे। तो यहां पर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं महाबाहो। तो अब ये एक शारीरिक स्तर पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारी ये जो भुजाएं हैं जो जग प्रसिद्ध है, इतनी बलशाली तुम्हारी ये भुजाएं हैं, परंतु चाहे किसी व्यक्ति की कितनी भी बलशाली भुजाएं हों, भगवान ये कह रहे हैं कि कोई कितना भी पराक्रमी योद्धा या राजा हो, जब तक उसने अपने इंद्रियों को नहीं जीता है तो उसने उन बलशाली भुजाओं का कोई वास्तविक प्रयोग किया ही नहीं। या भगवान ये कह रहे हैं कि क्या फायदा अर्जुन तुम्हारे, तुमको जो महाबाहो ख्याति मिली है, यदि तुम अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। तो कई बार हमें लगता है कि इस संसार में जो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत बलशाली हैं, जैसे कि ऐसे, तो इनको हम कहेंगे महाबाहो। समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसका पैर है या हाथ है या आर्म्स है, क्या है, तो लगता होगा कि हाँ भाई, आजकल की परिभाषा में इनको हम कहेंगे बलशाली भुजाएं वाले। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो महाबाहो का सही अर्थ है, जैसे कि एक व्यक्ति जो बहुत सारे योद्धाओं को एक साथ निग्रह करे, उसे कहते हैं महाबाहो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मसंयमी व्यक्ति है, वो अपनी एक स्थिर बुद्धि को लेकर अपनी सारी पांचों इंद्रियों को वश में रखता है। तो यहां कंपैरिजन बाहर की जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति, और आंतरिक शक्ति, उसके मन नियंत्रित और नियंत्रित मन और नियंत्रित बुद्धि, जो कि पांचों इंद्रियों को एक साथ वश में रख पाए। इसलिए जो जस्ट देखना क्या होना इसलिए जो आत्मसंयमी व्यक्ति होते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार ये सुना कि जो मनुष्य हैं, हमारे अंदर ये सारी क्षमताएं हैं कि हम पांचों इंद्रियों को एक साथ इंद्रिय भोग में लगा सकते हैं। पिछली बार हमने व्यक्ति सिनेमा देखते हुए कैसे पांचों इंद्रियों को एक साथ लगा रहा है देखा हमने। तो हमारे अंदर प्रकृति ने एक क्षमता दी है कि हम एक साथ पांचों इंद्रियों को इंद्रिय भोग में लगा सकते हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जैसे तुम्हारे अंदर ये क्षमता है कि तुम एक एक अकेले, वो जो अज्ञातवास में जब अर्जुन थे विराट उनके नगर में, राजा विराट के नगर में, तो अकेले अर्जुन ने इसी सेना को परास्त किया था, कोई भी नहीं, भगवान भी नहीं थे। और अर्जुन एक, जिसे कहते हैं यूनक, या एक हिजड़े के वेश में थे अर्जुन। और ऐसे नहीं कि अर्जुन बहुत तैयारी के साथ गए थे, अर्जुन तो पहले उनका जो पुत्र, महाराज विराट का पुत्र उत्तम कुमार, उसके रथी बन के गए थे, नहीं सारथी बन के गए थे, और फिर वो घबरा गया, तब फिर अर्जुन वहां पर चार्ज हाथ में लिए और अकेले पूरी कौरव सेना, ये सब थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, सबको अर्जुन ने अकेले परास्त किया था। तो भगवान ये सब याद दिला रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा ये जो युद्ध कौशल है, ये समझना कि एक योद्धा के लिए केवल शारीरिक रूप से अपनी भुजाओं को बलवान करना यही उद्देश्य नहीं है। एक योद्धा के लिए आंतरिक उसका निग्रह, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भगवान महाबाहो शब्द इस्तेमाल करते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि जैसे अर्जुन तुम अकेले इतने योद्धाओं को एक साथ नियंत्रण में ला सकते हो, वैसे ही अपने आंतरिक मन बुद्धि से अपने सारी इंद्रियों को एक साथ निग्रह मिलाओ। तो अब अगला शब्द भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं निग्रह। तो निग्रह के दो अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ है नियंत्रण, या कंट्रोल। और यहां पर दूसरा अर्थ निग्रह का हमारे आचार्य कहते हैं विरक्ति। अब यहां पर विरक्ति का अर्थ है कि जब कंट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप व्यक्ति इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ से ऊपर उठता जाता है। सो हियर आर टू लेवल्स ऑफ दिस वर्ड निग्रह। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ निग्रह इज कंट्रोलिंग थ्रू सम फोर्स, कंट्रोल थ्रू फोर्स। एंड विरक्ति रेफर्स टू वैराग्य और रेनंसिएशन। व्हेन वन डजंट हैव टू यूज फोर्स, वन बिकम्स डिटैच्ड वेरी एफर्टलेसली। तो ये दो लेवल है निग्रह वर्ड के जो अर्थ है उसका। तो आज के श्लोक में भगवान ने निग्रह शब्द की ये जो दो अर्थ हैं उसे और दो शब्दों के साथ समझाया। तो इसलिए अर्जुन को क्या कहा, महाबाहु बल के कारण। और विरक्ति जो दूसरा अर्थ है निग्रह का, उसका संदर्भ आएगा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, हायर इंटेलिजेंस। तो हम भी जब साधना भक्ति में लगते हैं तो साधना भक्ति में लगते समय हमें शुरुआत में महाबाहु बनना पड़ता है। इंद्रिय निग्रह के लिए हमें फोर्स या नियंत्रण यूज करना पड़ता है, बल यूज करना पड़ता है। ये मत देखो, ये मत खाओ, ये मत सुनो, इनसे मत संग करो। तो बहुत फिजिकल हमको एफर्ट्स डालना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद ने इस्कॉन में जो चार नियम दिए हैं, तो ये जो चार नियम हैं इनको पालन करने के लिए हमको बहुत हमारी लाइफ को फिजिकली चेंज करना पड़ता है। कि हम हमारे घर को, हमारे व्यवसाय को, हमारे रहन सहन को फिजिकली बलपूर्वक चेंज करते हैं। और एक एफर्ट लगता है उसको चेंज करने में। क्यों एफर्ट क्यों लगता है, बल क्यों लगता है? क्योंकि अब तक हम वैसा जीवन, ऐसा नियंत्रण का जीवन नहीं जी रहे थे। जैसे मैं जब वायुसेना में था तो वहां पर एक जो सोल्जर है, सैनिक है, उसका सबसे बड़ा एक लक्षण क्या होता है, डिसिप्लिन। सबसे बड़ा एक सोल्जर का गुण क्या होता है, डिसिप्लिन। तो इतनी ट्रेनिंग दी जाती है एक सैनिक को, केवल कुछ दिनों की ट्रेनिंग नहीं, सालों की ट्रेनिंग होती है। और वो ट्रेनिंग किस लिए, दो उसके प्रयोजन है वो ट्रेनिंग के। एक प्रयोजन है कि तुम्हें क्या करना है एज अ सोल्जर, डिसिप्लिन सोल्जर क्या करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके साथ साथ अब तक तुम जो इनडिसिप्लिन लाइफ जिए हो उसकी अनट्रेनिंग, दोनों एक साथ होता है। टू अनट्रेन यू फ्रॉम योर प्रीवियस इनडिसिप्लिन लाइफ एंड टू ट्रेन यू इन अ डिसिप्लिन लाइफ नाउ। जैसे कि सुबह उठना, तो एक सैनिक को सिखाया जाता है और बहुत सख्ती से सिखाया जाता है कि अगर वो एक मिनट के लिए भी लेट होता है तो उसको पनिशमेंट। जैसे हमारी परेड होती थी, हालांकि सबसे पहले 5 बजे की हेल्थ रन होती थी, तो हेल्थ रन में आपको, अब 5 बजे की हेल्थ रन में तैयार होकर जाना है, तो कम से कम कोई अगर बहुत ही जल्दी तैयार हो सकता है 4:45 बजे तो उठना पड़ता था उसको। तो कई मेरे बैचमेट थे वो रात को ही तैयार होके सोते थे। और अलार्म लगाते थे 4:55 का, पांच बजने से पांच मिनट पहले उठते थे और जूते वूते पहन के सोते थे, वो पीटी शूज वगैरह पहन के सोते थे और ऐसे ही उठ के सीधा वहां पर। तो वहां पर अगर कोई लेट हो गया, उसके बाद फिर परेड होती थी 7:30 बजे, तो स्ट्रिक्ट जो परेड उसका भी टाइमिंग एकदम पंक्चुअल होना है। अगर कोई भी उसमें आधा मिनट भी लेट आ रहा है तो उसको जो 4 किलो की राइफल है उसको वहीं पे बिठा के जहां से वो अभी आ रहा है वहीं पे बैठकर उसको फ्रॉग जंप बोलते थे, आपको अगर पता है फ्रॉग जंप, जिसमें अगर आप वो एक बार फ्रॉग जंप कर लो तो कई हमारे ऐसी उनकी हालत हो गई थी, टॉयलेट में नीचे बैठो तो या तो बैठ नहीं सकते, अगर बैठ गए तो उठ नहीं सकते, इतना वो शरीर दर्द करता था। तो ये सब इतना स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, ये इसलिए क्योंकि जो आराम का जीवन इतना जिया है ट्रेनिंग से पहले, उसको अंडू करने के लिए। और अब ऐसा स्ट्रिक्ट जीवन आपका एक नेचर बन जाना चाहिए, इसलिए सालों सालों ट्रेनिंग दी जाती। तो यहां पर जो हम देखें इस्कॉन में भी कि ये जो सत्व गुण में आने की ट्रेनिंग है, किसकी ट्रेनिंग है? सत्व गुण में आने की ट्रेनिंग है। इसलिए उदाहरण दिया गया है कि यदि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले सत्व गुण में आना है। इसलिए ये जो चार नियम है, ये चार नियम केवल हमें सत्व गुण में स्थापित करते हैं बस। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि जो चार नियम है ये केवल हमें पशु से मनुष्य बनाते हैं। तो सोचिए कि पहले का जीवन क्या था हमारा, कि चार नियम पालन करने के पश्चात हम पशु से मनुष्य बने, तो अब कोई ग्राउंड हमारा सिचुएट हुआ है जहां से हमारा प्लेन टेक ऑफ ले सकता। तो ये जो सत्वगुण है उसकी तुलना एक रनवे से की गई है और रनवे चाहिए एक प्लेन को टेक ऑफ लेने के लिए। तो इसलिए ये जो ट्रेनिंग है जिसके अंदर हमें बलपूर्वक, इसलिए नियंत्रण जो फर्स्ट लेवल निग्रह का है उसमें बलपूर्वक हमें करना पड़ता है। और फिर जब हमें हमारी बुद्धि वो शुद्ध होने लगती है तब अपने आप उन चीजों से हमारी विरक्ति पैदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर हम एक ऐसे रस का आस्वादन करना प्रारंभ करते हैं कि फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती जो पहले के कार्य जिनमें हम लगते थे उनकी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ये जो दो अर्थ निग्रह के आज के श्लोक में कि हां अर्जुन अभी दूसरा अध्याय चल रहा है, दूसरे अध्याय में तुमको महाबाहो भगवान कह रहे हैं क्योंकि यहां बलपूर्वक तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, लेकिन जैसे तुम ये भगवद गीता और आगे सुनोगे तो तुम्हारी जो प्रज्ञा तुम्हारी जो बुद्धि है वो अपने आप ये जो तुम्हारी आसक्ति है इससे विरक्ति पैदा करवाएगी। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति हमें कैसे चेक करनी चाहिए कि यदि अभी भी हमें ये जो बेसिक नियम है उनको पालन करते हुए बल की आवश्यकता पड़ रही है तो अभी तक केजी में ही है हम, ये समझना चाहिए। हमारे साधना भक्ति में प्रगति कब हो रही है, जैसे एक प्रवचन में मैं बता रहा था कि सुबह 4:30 की अलार्म यदि हमें भगवान की बांसुरी की तरह सुनाई दे, जैसे गोपियों को भगवान की बांसुरी सुनाई देती थी, तो समझ लेना चाहिए हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन यदि वो हमें कुरुक्षेत्र का शंख जैसे सुनाई दे सुबह 4:30 का अलार्म, आप लोगों में से कई लोग तो 4:30 सुबह का मैं बोलूं इसलिए ध्यान में रहे, वो एएम पीएम क्लैरिफाई करना पड़ेगा पहले। So if the sound of the morning alarm clock It is as sweet as Krishna's flute playing that we are eager to go for the Mangalarti and to perform our morning sadhana, then yes, the virakti is taking place. If not, if we have to struggle to get up in the morning or to do anything for Krishna, if that struggle is still there, we are in the stage of niyantrana, control. Sharirik bal istamal karna pad raha. Abhi tak wo virakti jagrat nahi ho rahi. To ye bahut mahatvapurna hai yahan par. Bhagwan dekhiye, ek nigrahitani. Ye jo word hai, this is the key word of this verse. Is nigraha word, isliye hum log ye slide pe itna jyada discuss kar rahe hain. Kyunki iska connection hamare sadhana bhakti mein aaj 2012 mein bhi lagu hota hai. तो यहां पर उदाहरण है, जब अमेरिका ने अपोलो 11 लॉन्च किया, जो उनके अनुसार जो मून एक्सपीडिशन था, तो अपोलो 11 के विषय में बताया गया है कि जब इसके अंदर जो फ्यूल था वो इतने सैकड़ों करोड़ों लीटर फ्यूल था इसके अंदर, तो जब इसका काउंटडाउन हुआ और इसका लॉन्च ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट मतलब ऊपर जाने के लिए, तो 50% फ्यूल इसने जो अर्थ का ग्रेविटी है उसको पार करने में यूज कर लिया. अपोलो 11 यूज्ड अप 50% ऑफ इट्स फ्यूल जस्ट टू क्रॉस द ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ अर्थ. और उसके बाद उसको इतने फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ी. तो यह उदाहरण मैं इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमारी जो पुरानी बुरी आदतें हैं, वो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है ना, गुरुत्वाकर्षण, उसकी तरह है. इसलिए शुरुआत में हमको पूरा फ्यूल, 50% फ्यूल यूज करना पड़ता है वो पुरानी आदतों से बाहर आने के लिए. तो वो क्या है, जो पिछला स्लाइड आपको याद है, नियंत्रण. उसमें बलपूर्वक हमको सब कुछ करना पड़ता है. फिजिकली वी हैव टू चेंज अवर लाइफस्टाइल. और उसके बाद में जब बुद्धि से समझ में आता है कि हां ये कैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करें, शुरुआत में नहीं समझ में आता है कि हम ये सुबह उठकर चैंटिंग करना, चार नियम, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं. शुरुआत में बस सब लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, करना चाहिए, करना चाहिए. फिर जब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित होते हैं हमारी स्थिर दिव्य बुद्धि में, तो अपने आप ये जैसे अपोलो 11 वो ग्रेविटी को पार करने के बाद फिर विरक्ति, वो जो कंट्रोल या फिर बल था वो उसको इस्तेमाल करना नहीं पड़ा. सो ये दो लेवल हमारी साधना भक्ति में इस उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं. एक और उदाहरण चील का है. आपने देखा होगा ये जो पक्षी है, ये कई बार आप देखोगे ये जो दो चित्र आपके सामने हैं इस चील के, तो एक चित्र में, या अगर मैं पूछूं कि दोनों चित्र में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, ये दो चित्र क्यों मैंने दिखाए आप लोग, जो ये चित्र है इसमें वो चील पंख को फड़फड़ा रहा है ना. और आपने देखा होगा चील बहुत समय उनको पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, दे जस्ट फ्लोट. ऐसे लग रहा है कि जैसे वो, जैसे स्विमिंग में होता है ना फ्लोटिंग, जस्ट वो फ्लोट कर रहे हैं. जैसे प्लेन, कैसे आपने कभी देखा प्लेन पहले टेक ऑफ के समय ऐसे से कर रहा है फिर स्थिर हो जाता है ऐसे. तो जैसे प्लेन लगता है कि ऐसे फ्लोट कर रहे हो आकाश मंडल में, तो ऐसे ये चील आप देखोगे
इसकी भी बैटरी गई, कई बार ऐसे होता है हमारी भी बैटरी फिर से चार्ज करना पड़ता है। तो ये चील भी ऐसे ही है, ये जब फ्लैप करता है अपना विंग्स तो चार्ज कर लेता है पूरा, फिर चार्ज बैटरी को हम लोग यूज करते हैं ना, फिर वो फ्लोटिंग, फिर बाद में जैसे ही वो चार्ज गया उसके बार्स कम होते गए वापस से फिर फ्लैप करता है। तो साधना भक्ति ऐसी है हमारी कि हमको जैसे कि हम मंदिर में आते हैं, तो मंदिर में आते हैं तो यहां पर बहुत से आध्यात्मिक क्रियाओं में लगते हैं, तो फिर चार्जिंग के समान है। और फिर जैसे बाहर जाते हैं तो उस चार्ज को यूज करके फिर हमको जैसे कि ये फ्लोट करता है चील, उस प्रकार से फ्लोट करना है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बताया गया और ये दो लेवल हैं। तो इनिशियल लेवल क्या है कि जैसे ही वो चील टेक ऑफ लेता है उड़ने के लिए तो उसे अपना शारीरिक बल इस्तेमाल करना पड़ता है और वो फ्लैप करता है फ्लैप करता है फ्लैप करता है। लेकिन फिर एक स्टेज पहुंचने के बाद ऊपर बहुत सा उसको नीचे से प्रेशर मिलता है, नीचे की एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर भी मिलता है, जिसके वजह से उसको अब ज्यादा फ्लैप करने की जरूरत नहीं पड़ती एक हाइट को पहुंचने के बाद। तो वही भगवान अर्जुन को इस दूसरे अध्याय में महाबाहु कहकर पुकार रहे हैं कि अभी तुम्हें बलपूर्वक मेरी बात को मानना है, तुम युद्ध करो, और जैसे जैसे मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं तो तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, स्थिर होगी, दिव्य बनेगी, और फिर तुम अपने आप, जो अर्जुन के साथ हुआ, अर्जुन ने अपने आप कहा कि अब मैं जो आप कहोगे वो करूंगा। तो ये निग्रह शब्द के दो अर्थ। तो भगवान ने केवल इतना ही नहीं कहा निग्रह, उसके साथ साथ भगवान ने क्या कहा, निग्रहितानि सर्वशः। तो देखिए भगवान जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इंद्रिय निग्रह के संदर्भ में कितने प्रिसाइस शब्द हैं कि कहीं पर भी कोई लूप होल नहीं छोड़ रहे भगवान, क्योंकि जानते हैं कि मनुष्य की बुद्धि इतनी विकृत है कलयुग में कि एक एक शब्द को लेकर उसका अलग अर्थ निकाल कर उसको कहेंगे कि भगवान ने तो केवल निग्रह कहा है ना, ये नहीं कहा है कि सर्वशः, कौन से समय कहां पर किस तरीके से। इसलिए भगवान हमारी उस बुद्धि को जानते हुए तीन ये सर्वशः निग्रहतानि सर्वशः इसके तीन अर्थ बताए हैं। सबसे पहले पूर्ण रूप से कंप्लीटली। अब अगर भगवान कहते कि 50% निग्रह कर लोगे तो काम बन जाएगा अर्जुन, अगर इतना भगवान कहते कि 50%, जैसे होता है ना पासिंग मार्क 35%, तो डिग्री तो मिल जाएगी, 35% मिल गया डिग्री मिल जाएगी, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या है 100%। भगवान केवल 35% ग्रेस मार्क्स ये वो उसमें काम नहीं चलता है, 100% सर्वधर्मान परित्यज्य। इसलिए सर्वशः का अर्थ है, सबसे पहला अर्थ है पूर्ण रूप से 100% तुम्हें इंद्रिय निग्रह करना है, 1% भी उसको छोड़ना नहीं है, 100% निग्रह करना है। फिर सर्वशः का दूसरा अर्थ सभी प्रकार से। अब इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आजकल लोग जो इंद्रिय भोग है या शिल प्रभुपाद जिसको सेंस ग्रेटिफिकेशन बोले हैं उसको अलग अलग प्रकार से करने की चेष्टाएं करते हैं। जैसे वही इंद्रिय भोग को वो एकांत में करेंगे या बहुत लोगों के साथ करेंगे किसी पार्टी में। जैसे कोई शराब पीता है तो कई हैं जो उसको एकांत में पीना पसंद करते हैं और कई हैं जो मिल बांट के उसको पीना पसंद करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई अपने इंद्रिय को निग्रह करने में जुटा हुआ है तो इंद्रिय तृप्ति कितनी भी प्रकार की बन जाए उसे हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना है, ऑफ ऑल टाइप्स। इसलिए यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि ये वो सब जितने भी इंद्रिय तृप्ति। तो भगवान ने इंद्रिय तृप्ति की तुलना विष से की है, जहर से। तो अगर हम जहर का एग्जाम्पल लें तो इसलिए विष और विषय, विषय कौन है? सेंस ऑब्जेक्ट्स। और विष का अर्थ है पॉइजन। तो जीव गोस्वामी हमारे संप्रदाय के आचार्य वो कहते हैं विष और विषय में ज्यादा खतरनाक कौन है? विषय। क्योंकि विष आपको मारेगा जब आप शारीरिक रूप से उसे खाओगे, केवल जहर की बोतल देखने से कोई नहीं मरेगा, है ना। लेकिन भगवान इस दूसरे अध्याय में क्या कहें कि विषय के ऊपर ध्यान करने मात्र से, ध्यान तो विषयान पुमसा, कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा जहर पैदा कर दे कि उसके ऊपर कोई ध्यान कर ले तो मर जाए, कितना खतरनाक जहर होगा वो। तो प्रकृति ने ये खतरनाक जहर बनाया हुआ है, सेंस ऑब्जेक्ट्स। ध्यान मात्र से वो खत्म हो जाएगा। तो अगर हम जहर का एग्जाम्पल लें, अब जहर को कोई व्यक्ति चाहे कितने भी अच्छे पात्र में लेकर खाए, मान लीजिए कोई कहे कि मैं इसको ना एकदम सात्विक तरीके से खाऊंगा, पत्तल में लेऊंगा, दोने में लेके बहुत सात्विक तरीके से खाऊंगा, तो विष है। चाहे उसे आप जितने भी अलग अलग प्रकार से लेने का प्रयास करें, या कोई कहे मैं एकांत में विष खाऊंगा तो कुछ नहीं होगा मेरे, या बहुत लोगों के साथ खाऊंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे विष को आप एकांत में खाइए, बहुत लोगों के साथ खाइए, चाहे उसे कोई अच्छे सोने के पात्र में डालकर खाइए या ऐसे ही ले लीजिए बिना कोई पात्र के, वो अपना कार्य तो करने वाला है। इसलिए भगवान जो यहां पर कह रहे हैं निग्रहतानि सर्वशा, उसका अर्थ है सभी प्रकार के इंद्रिय भोग के ऊपर निग्रह अपना लगना। तो हम अब अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में ये भगवद्गीता का श्लोक लेकर ट्रांसलेट कर सकते हैं कि मेरे लिए मैंने किन किन वस्तुओं को इंद्रिय भोग बनाकर रखा है। यदि हम एक एक लेते जाएंगे तो फिर अपना तो ये क्लास खत्म ही नहीं होगा कभी। इसलिए भगवान बहुत बुद्धिमान है, सर्वशा इंडिविजुअली आप अपने मन में झांक कर देख लो कि मेरा पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन सबका बहुत यूनिक होता है, अलग अलग प्रकार का, तो कैसे उसके ऊपर नियंत्रण हमें प्राप्त करना है। फिर तीसरा अर्थ सर्वशः का है सभी स्थानों में। तो कई बार भारतीयों को लगता है कि भारत में इंद्रिय भोग इतना अच्छा नहीं, अमेरिका में इंद्रिय भोग बहुत रिफाइंड क्वालिटी का मिलता है। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां ऐसी हैं कि चाहे कोई धारावी झोपड़पट्टी में है या कोई गटर का सुअर है या कोई हॉलीवुड में अमेरिका में रह रहा है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य भवानंद प्रभु है, तो वो कुछ समय के लिए हॉलीवुड में भी, उन्होंने इस्कॉन में आने से पहले वो जैसे मॉडल या हॉलीवुड में थे, वो बहुत अच्छे दिखते। फिर वो इस्कॉन में हो गए, ज्वाइन हुए, तो प्रभुपाद के साथ एक मॉर्निंग वॉक पर वो थे,
बेवरली हिल्स।
बेवरली हिल्स वो ऐसी जगह है जहां पर ये सारे हॉलीवुड के सितारे रहते हैं। तो वहां प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे, तो ये देख रहे हैं एक से एक बंगले गाड़ियां, ऐसा ऐश्वर्य बेवरली हिल्स का। और ये बहुत पीछे पीछे प्रभुपाद के पीछे पीछे चल रहे हैं, प्रभावित हो रहे थे, प्रभुपाद आगे आगे चल रहे। और प्रभुपाद अपना जप करते हुए चल रहे हैं, हरे कृष्णा जप करते हुए। और अचानक प्रभुपाद ने अपना गला साफ किया और थूक दिया। तो अब ये देखिए कि मैं इस पूरे बेवरली हिल्स एरिया को इतना बड़ा चढ़ा कर मान रहा हूं, प्रभुपाद थूक दिए इधर। तो उनका एक साक्षात्कार हुआ, वो बोल रहे थे, दिस ऑपुलेंस, मटीरियल ऑपुलेंस विच आई वॉज रिगार्डिंग एज समथिंग सो सुपीरियर इन क्वालिटी, प्रभुपाद स्पैट एट इट। तो चाहे कोई किसी भी योनि में इंद्रिय भोग करे, वो इंद्रिय भोग का प्रकार एक ही है। इसलिए राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में बोल रहे थे कि एक कॉकरोच के सामने अगर मिस इंडिया खड़ी हो जाए या मिस यूनिवर्स खड़ी हो जाए, तो ये नहीं कि कॉकरोच बहुत उछल पड़ेगा, ऑटोग्राफ मांगेगा या अपनी फोटो खिंचाएगा उसके साथ। कॉकरोच को क्या लगेगा? कॉकरोच को यही लगेगा कि ये कौन मॉन्स्टर मेरे सामने खड़ा है, उसको कोई आकर्षण नहीं हुआ। लेकिन कॉकरोच के लिए दूसरा कॉकरोच, वो उसके लिए उनके समुदाय में होगा कोई मिस कॉकरोच, मिस्टर कॉकरोच, उसके प्रति उसको उतना ही आकर्षण रहेगा जितना कि मनुष्यों को आपस में एक दूसरे के प्रति रहेगा। तो यहां पर भगवान ये कह रहे हैं कि चाहे आप स्थान परिवर्तित कर लो, चाहे कोई भी प्लैनेट पर चले जाओ इस भौतिक संसार में, उसका प्रकार बदल लो, योनि बदल लो, सब कुछ बदल लो, एट द एंड क्या है? जहर है वो। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो क्रिया जो कर्म आपको एक और जन्म दिलाए वो जहर के समान है। मतलब अनदर इम्प्रिजनमेंट, मतलब एक और हमसे क्राइम हो गया, एक और जन्म मतलब एक और क्राइम हो गया। तो इसलिए भगवान जब कह रहे हैं निग्रहितानि सर्वशः, हे अर्जुन हे महाबाहो, कि हर प्रकार से हर समय हर स्थान पर तुम अपने इंद्रियों के ऊपर निग्रह रखो। तो श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में कहे, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स कंप्लीटली एट ऑल टाइम्स इन ऑल प्लेसेस। क्योंकि प्रभुपाद ये अपने एक प्रवचन में इसलिए कहे क्योंकि कई बार लोग अध्यात्म का पालन करते हैं लेकिन उसका एक टाइम रहता है निर्धारित, बस सुबह के समय 10 मिनट भगवान के सामने अगरबत्ती जला दी, घुमा दी, जो भी, बस उसके बाद में भगवान डिस्टर्ब मत करना मुझे, मैं आपको नहीं करूंगा, आप अपने ऑल्टर पर बैठे रहना, मैं अपने गल्ले पर बैठा रहूंगा, दोनों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि अध्यात्म को, या हमारे आचार्य एक एग्जाम्पल देते हैं कि उसको जैसे वो पिज्जा के ऊपर वो टॉपिंग्स डालते हैं ना, ऐसे गार्निशिंग, कुछ ऐसे वो स्पाइसिंग लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ा और उसको करने के लिए किया। तो मेन मील क्या है? मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो मेन वो जो पिज्जा है वो मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन, और उसके ऊपर जो मैं फ्लेवरिंग डाल रहा हूँ कुछ अध्यात्म की, हाँ चलो थोड़ा शिरडी साई बाबा हो गया, थोड़ा हनुमान जी हो गए, थोड़ा हरे कृष्णा भी हो गया, वेडनेसडे को हरे कृष्णा, फिर मंगलवार को हनुमान जी, फिर सोमवार को शिव जी, ऐसे सब अलग अलग स्पाइसिंग होना चाहिए, तो फिर पिज्जा में मजा आता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट एन ऑप्शन, if you want Krishna Prem, Krishna consciousness is not an option. It is a necessity. Completely, at all times, in all circumstances. Tab jaakar Bhagwan Krishna ka prem ya jo Arjun ko prapt hua divya sandesh, wo phir hamare jeevan mein utrega. To iske sandarbh mein udharan diya gaya hai ki jo wo mixed type hote hain ki thoda idhar thoda udhar thoda sab jagah, uska udharan girgit ki tarah diya hai. Thoda strong udharan hai. तो गिरगिट क्या है, जैसे कि मेरा एक मित्र था, तो उसको मैंने देखा कि उसके उसका हर दिन तिलक बदलता रहता था, माथे का अलग अलग तरीके का कलर बदलता था, कभी व्हाइट कभी रेड कभी थोड़ा ऑरेंज कभी मिक्स्ड. तो मैंने कहा तो बोला अरे इस मंदिर में भी उस मंदिर में उस मंदिर. तो कई बार क्या होता है कि जो इस प्रकार का व्यवहार होता है उसमें, जैसे गिरगिट आप देखे होंगे, अभी यहां पर पूरा बैकग्राउंड ग्रीन है तो ग्रीन बन गया वो, फिर बाद में जैसे वहां पर कुछ और कलर आ गया ब्राउन हो गया तो ब्राउन बन जाता है. लेकिन यदि हमें स्थित होना है स्थिर बुद्धि में, क्या तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो प्रतिष्ठित यदि हमें होना है स्थिर या दिव्य बुद्धि में, तो भगवान कह रहे हैं कि उसके लिए सर्वशः हर तरीके से हर प्रकार से हर समय हर स्थान पर उस व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित होना है. दल बदलू नहीं या रंग बदलू नहीं, इस गिरगिट की तरह. तो इसके विपरीत उदाहरण है कि एक जो शुद्ध भक्त भगवान का होता है वो गाय के समान होता है. तो गाय का उदाहरण हमारे आचार्य दिए हैं कि गाय जो होती है, चाहे उसको आप हरा घास खिलाओ चाहे सूखा घास खिलाओ, दूध देगी वो. और कौन सा दूध देगी? पौष्टिक दूध देगी. चाहे आप उसको अमेरिका में ले जाओ चाहे इंडिया में चाहे कहीं पर भी ले जाओ, गाय क्या करती है? दूध देती. यहां तक कि शास्त्र में बताया गया है कि उस गाय की जो मनुष्य हत्या भी कर देता है, जो गो हत्या भी करता है, वो भी गाय का ही दूध पीता है. तो गो हत्या भी यदि गाय की होती है, लेकिन वो जो उसका कर्तव्य है, जो उसकी निष्ठा है, अपना दूध दूसरों को देकर उन्हें पौष्टिकता प्रदान करना, वो कभी नहीं छोड़ते. सो प्योर डिवोटी इन ऑल प्लेसेस इन ऑल सर्कमस्टेंसेस इज लाइक द होली मदर काउ, ऑलवेज ट्राइज टू गिव द मोस्ट न्यूट्रिशियस एंड स्वीट मिल्क, कंसिस्टेंट लॉयल. दैट इज द क्वालिटी व्हाट कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग थ्रू दिस वर्स, निग्रहितानि सर्वशः. फिर अंतिम जो लाइन आज के श्लोक की, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसको श्रील प्रभुपाद ने अनुवादित किया है स्थिर बुद्धि, कि जब व्यक्ति जीव मनुष्य अपने समस्त इंद्रियों को हर प्रकार से हर समय हर स्थान पर नियंत्रण में लाता है, विरक्त हो जाता है, तो भगवान कहते हैं तब जाकर वो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित होता है स्थिर बुद्धि में. तो अब स्थिर बुद्धि के तीन अलग अलग अर्थ दिए गए हैं कि जब व्यक्ति स्थिर बुद्धि में स्थित होता है, तस्य प्रज्ञा उसमें स्थित होता है, तो लाभ हानि सबसे पहले उसके लिए क्या लाभदायक है और क्या हानिकारक है, इसमें भेद कर सकता है. अब जैसे कई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनकी बुद्धि नहीं होती, जैसे भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा नास्ति बुद्धि, बुद्धि नहीं है, तो वो ये भी नहीं जान सकते कि उनके लिए लाभदायक क्या है और हानिकारक क्या है. जैसे कि कोई सिगरेट पी रहा है, लिखा हुआ है उसके ऊपर ये आपको कर्क योग रोग देगा, इट विल गिव यू कैंसर, गुटका, ये वो सब लिखा हुआ उसके ऊपर, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं है तो वो उसके लिए लाभदायक क्या है, हानिकारक क्या है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो स्थिर बुद्धि का पहला लक्षण है, ये भी तीन लेवल के अर्थ बताएं, पहला लक्षण है कि लाभ हानि में डिफरेंशिएट कर पाता है उस स्थिर बुद्धि के कारण। फिर स्थिर बुद्धि के वजह से जो सेकेंड लेवल को प्राप्त करता है ये व्यक्ति, वो योग्य और अयोग्य, कई बार कई चीजें आपके लिए लाभदायक होंगी, जैसे कि पैसा कमाना। पैसा कमाना कौन कहेगा कि लाभदायक नहीं है, उसी में तो सब कुछ, सब लाभ है, सारा शुभ लाभ उसी के अंदर। तो हां, ये सेकेंड लेवल प्रज्ञा का क्या है, स्थिर बुद्धि का ये है कि लाभ हानि के ऊपर योग्य अयोग्य, ठीक है पैसा कमाना लाभदायक होगा, लेकिन क्या वो योग्य तरीके से किया गया या अयोग्य तरीके से किया गया। तो ये सेकेंड लेवल स्थिर बुद्धि का है, जब वो केवल इतना ही डिफरेंशिएट नहीं करता कि मेरे लिए लाभदायक क्या है, हानिकारक क्या है, बल्कि उससे ऊपर उठकर उसकी बुद्धि ये भी डिफरेंशिएट कर सकती वेदर इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर, वो लाभ मेरे लिए योग्य है या अयोग्य है, वो हानि क्या है, योग्य है या अयोग्य है, ये सेकेंड लेवल। और फिर भगवान कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि का थर्ड लेवल है धर्म अधर्म, क्योंकि बहुत सी चीजें हम जो मनुष्य समाज में योग्य अयोग्य मान लिए होंगे, परंतु शास्त्र के अनुसार वो धार्मिक अधार्मिक है कि नहीं, ये सबसे ऊंचा लेवल है। जैसे कि युद्ध लड़ना, युद्ध लड़ना, अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे भाई इसमें तो मारा मारी है, हिंसा है, खून खराबा है, तो ये कैसे योग्य हुआ। लेकिन शास्त्र के अनुसार, हमारे कैलकुलेशन के अनुसार अयोग्य होगा, लेकिन शास्त्र के अनुसार अर्जुन का ये धर्म था और युद्ध नहीं लड़ना अधर्म था। तो इसलिए भगवान अर्जुन को ये दो लेवल से ऊपर उठा करके, अर्जुन तुम केवल लाभ हानि योग्य अयोग्य मत देखो, क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन ने ये दो लेवल लिया था अपनी बुद्धि का, कि मेरे लिए लाभदायक क्या है, मेरे लिए हानिकारक क्या है, और क्या ये युद्ध लड़ना योग्य है या अयोग्य है, ये सब एक्सप्लेन किया। अब भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन वो ठीक है, तुम्हारी बुद्धि तुमने इस्तेमाल कर कर ये सब कुछ मुझे बताया, लेकिन थर्ड लेवल बुद्धि का क्या है, धर्म और अधर्म, और मैं चाहता हूं कि तुम धर्म की स्थापना करो, तुम सूत्रधार बनो हे अर्जुन मेरे और धर्म की स्थापना करो, और वो सबसे ऊंचा लेवल है। और उसी को भगवान ने भगवद गीता के अंतिम अध्याय में भी कहा है कि भगवान को शरणागत होना यही सर्वोच्च धर्म है। तो ये तीन लेवल स्थिर बुद्धि के आज के श्लोक के द्वारा भगवान समझा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि भगवद गीता को भगवद गीता क्यों कहा गया है, क्योंकि भगवान का गीत है। अब देखिए ऐसे ऐसे ये फिलोसॉफिकल वर्सेस हैं, जिसके अंदर दार्शनिक सिद्धांत एकदम बहुत ही डीपली समझाया गया है, तब उसको गीत कैसे कहो गया। गीत जनरली क्या होता है, जैसे बाहर चल रहा है अभी, तो अगर हम कहें कि हर वेडनेसडे को गीत चलता है यहां पे, आप किसी को बोलो कि हम हर वेडनेसडे जाते हैं हरे कृष्णा मंदिर में 8 से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक गीत गाया जाता है, तो वो लोग अगर आए तो यहां पे तो ये एक एक वर्स और यहां माइक्रोफोन के ऊपर ये एक एक पॉइंट को लेकर कि हमारे नियंत्रण निग्रह का 2 अर्थ, सर्वशाह के 3 अर्थ, ये कैसा कैसा गीत हुआ। तो भगवद गीता जो कि भगवान का गीत कहा गया है, आज के श्लोक का जो अंतिम लाइन है उसे हम समझ सकते हैं कि कैसे ये भगवान का गीत है। तो कोई भी गीत, उसके 2 लक्षण बताए गए हैं। संस्कृत के अनुसार वो जिस छंद में, इंग्लिश में जिसको मीटर बोलते हैं, वो अनुष्टुप छंद में होना चाहिए। और दूसरा अर्थ गीत का कि जो पद होते हैं गीत के, जो लाइंस होते हैं, उनकी पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का अर्थ है रेपिटेशन। जैसे आप कोई भी गीत गाओ तो हम लोग भजन गाते हैं ना कि वंदे गुरु श्री चरणारविंद, तो हम लोग मंगल आरती गाते हैं और बार बार वो रेपिटेशन होता रहता है, वंदे गुरु श्री चरणारविंद, वंदे गुरु श्री चरणारविंद, एक एक दो दो लाइन बाद वो रिपीट होता रहता है। तो ये दूसरा गीत का लक्षण है, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो अब भगवद गीता में यदि हम मीटर देखें, उसका छंद देखें, तो भगवद गीता भगवान ने इस अनुष्टुप छंद में गाई। अनुष्टुप छंद होता है जब उस श्लोक में 8 अक्षर होते हैं और 8 या 11 अक्षरों का वो छंद बनता है। तो वो जो कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशंस को अनुष्टुप छंद कहते हैं और वो गीत के रूप में गाया जाता है, उसका कैटेगरी गीत हो जाता है फिर। और जो दूसरा लक्षण है गीत का, वो आज का जो लास्ट लाइन है श्लोक का, उससे समझ में आया, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, रिपीटेशन, कि ये जो लास्ट लाइन है 2.57, 2.58, 2.61 एंड 2.68 आज का श्लोक, इन सब श्लोकों में, आप लोग के लिए होमवर्क है, जाके चेक कर सकते हैं, ये सब श्लोकों में लास्ट लाइन में भगवान क्या कह रहे हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहां पर सिद्ध होता है कि भगवद गीता केवल कोई ड्राई फिलोसॉफिकल बुक नहीं है। कई लोगों को लगता है भगवद गीता ने थोड़ा कुछ लीलाएं सुनाओ, थोड़ा कुछ कृष्ण के भजन वजन गाओ, दशम स्कंद से वृंदावन लीला के भजन गाओ भगवान के, ये क्या इतना ड्राई सब सुना, नहीं, गीत है ये, गीत। ये दो लक्षणों से सिद्ध हो रहा है कि भगवद गीता ये एक गीत है, भगवान द्वारा गाया गया और भगवान ने गाया है, इसलिए कोई ये साधारण सुगम संगीत नहीं है, ये दिव्य संदेश। और उसके साथ साथ तो देखिए, भगवान के अंदर ऐसी काबिलियत है, क्षमता है कि भगवान गीत के द्वारा हमको सबसे इंपॉर्टेंट डीप फिलोसॉफिकल जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत कर दे सकते हैं। तो इसलिए इसे भगवद गीता को कहा गया है दुग्धम गीतामृतम महत्। इसलिए हमारे वेडनेसडे प्रोग्राम का नाम भी क्या है, क्या है, अमृत है। गीता का ये अमृत है जिसका हमें पान करना है। और इस धारणा में, हम इस भावना में यदि भगवद गीता का पान करेंगे तो अवश्य ही निगृहतानि सर्वशा, अपने आप वो, हमें बल इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, अपने आप विरक्ति पैदा होगी और हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगते हुए उनका निग्रह हो पाएगा। और अब अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाने वाले हैं कि अन्य मनुष्यों से आत्मसंयमी मनुष्य में क्या अंतर है, दोनों का डिफ्रेंसिएशन क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है एक और इस अध्याय का, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो यदि हमें भी जानना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो पहले सुन लें कि अन्य मनुष्यों में और आत्मसंयमी मनुष्यों में क्या अंतर है, और फिर हम कौन से क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।